वीर गान में वीरबल विमान महान जिन पितरे हमारी। सुबह पूज्य गुरुदेव सिंह का कोटेशन अपन पढ़ रहे थे, अगर बात बीच में ही अधूरी रह गई थी। तीन माताओं के आसन है, सिर्फ उतनी ही बात कहना बाकी है, फिर अपन अगला कलश चढ़ाएंगे। प्रश्न ये था कि मिथ्या तो अज्ञान, असंयम और यौन, ये चार बंध के कारण हैं। और आप कहते हो कि ज्ञानी के ये है नहीं, इसलिए ज्ञानियों को बंध होता नहीं। तो ज्ञानी तो चौथिक निष्ठान वाले सम्य दृष्टि को भी कहते हैं, तो संयम वाले के आवृत्ति कैसे थे? सम्य दृष्टि के योग कैसे नहीं है? दो तो नहीं है, मिथ्या तो अज्ञान, इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। और इसका उत्तर गुरुदेव श्री क्या देते हैं वो अपन पढ़ रहे थे, और उसमें से बात अपनी लंबी लंबी चल रही थी, वो कहां छूटी थी उसे छोड़ दो, इन्हें गुरुदेव का कोटेशन अपन पढ़ते हैं। चौथे गुणस्थान में जब सम्य दर्शन व आत्मानुभव प्रकट होता है, तब अनंत गुणों का आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है, आंशिक रूप से अवृत बना टल जाता है, अवृत्ति टल जाती है। निष्क्रियत्व गुण की भी आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है, अर्थात वो आंशिक रूप से आत्मा अकंप, आत्मा में अकंप भाव प्रकट हो जाता है। सर्वथा योग का अभाव तो चौदहवें गुणस्थान में प्रकट होता है, परंतु चौथे गुणस्थान में अंश रूप से योग का अभाव हो जाता है। बात ऐसी है कि योग असंयम कहते तो उसे अवृत्ति, अवृत सम्यक दृष्टि, ये गुणस्थान का नाम क्या है, अवृत सम्यक, वृत्त नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी जो चारित्रमोह की प्रकृति है, तो उसके चले जाने से कुछ ना कुछ संयम तो प्रकट हो जाता है। और ऐसे ही योग करके कंपन में भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, तो आरंभ हो जाने की अपेक्षा की बात यहां पर कह दी है। पूर्णता तो चौदहवें स्थान में होगी योग की, और अवृत्ति की समझो बारहवें स्थान के बाद तेरहवें स्थान में होगी। अवृत्ति जो है, अब इसको जरा थोड़ा बारीकी से समझें, हमारे जीवन में जितना पुण्य पाप के भार हैं और पुण्य पाप की क्रियाएं हैं जो हमें सबको दिखाई देती हैं, हमारे मन में और आत्मा में उससे अनंत गुणी हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, हमारे जीवन में अभी अकेला पाप पकड़ो, जितना पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, मन में उससे अनंत गुणा है। वो प्रकट क्यों नहीं होता है कि प्रकट होने के लिए शक्ति चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम सबको मार दें, लेकिन एक को नहीं मार सकते, क्योंकि वो भी तो हमें मार देगा, और पुलिस पकड़ेगी, फिर जेल में जाना पड़ेगा। रावण के मन का पाप सारी दुनिया को प्रकट हो गया, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं था, अर्ध चक्रवर्ती सम्राट था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। सीता का अपहरण करके ले गया और कहने लगा कि मैं तो अपनी पटरानी बना के रखूंगा। अरे आज के लोग इस दुनिया में जितने हैं, वे अब सब अपने छाती पे हाथ रखकर देखें कि किसी माँ बहन को देखकर उनके अंदर भी ऐसा विकल्प आ जाए तो वे जवान पे ला सकते हैं क्यों? कि किसी भी औरत को पकड़ के ला के रख ले और कहेगा नहीं मैं तो इसे अपने घर में रखूंगा, मोहल्ले वाले पिटाई कर देंगे, सबसे पहले तो पत्नी पीटेगी, क्यों? माँ बाप भी देंगे, मोहल्ले वाले, सरकार है नहीं? तो वो उसका ये भाव प्रकट क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि वो शक्तिशाली था, उसे किसी का डर नहीं था। और सामान्य जन के अंदर भी ऐसे भाव होते हैं लेकिन वे प्रकट नहीं होते हैं। उन्हें तो राजा साहब को लग जाएगा मुझे तो बाहुबली का राज चाहिए भरत चक्रवर्ती को चढ़ाई कर दी। अब तुम्हें भी मन में बहुत आ जाएगा पड़ोसी क्या कम से कम 2 फुट जमीन तो मैं हड़प लू तो मेरा जीना ढंग से बन जाए क्यों, लेकिन नहीं हड़प सकते, मन में बहुत इच्छा होती है, दुकान मकान लेने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन कितनी कितनी झंझटें हैं। तो गवर्नमेंट के डर से, समाज के डर से, घर वालों के डर से, बाल बच्चों के डर से, क्यों रावण के कितने बड़े बड़े बेटे थे, इंद्रजीत को है ना बेटा ही था ना, पर चक्रवर्ती के भरत के कितने बड़े बेटे थे मालूम, मारी तो उनका बेटा था और वो ऋषभ देव के साथ दीक्षा ले गया था, इतना बड़ा बेटा था, और उसके बाद हजारों शादियां करी बोला, और आज किसी को दूसरी शादी है पत्नी, पहली पत्नी मर जाने के बाद भी दूसरी शादी करने का विकल्प आए तो बच्चे क्या कहेंगे, इसका भी विकल्प सताता है, घर में एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। तो हमारे मनों में जितना पाप है वो हमारे जीवन में उसका अनंतमा भाग भी नहीं है। अब वो बड़ा पाप है जो मन में है, वो जो छोटे पाप है तो वो अनंत गुणा पाप निकल गया, अनंतानंदी कसाय निकली तो, लेकिन वो तो हमारे जीवन में प्रकट था ही नहीं तो पता कैसे चलेगा ये वृत्ति हो गया। अंदर में शुद्धि तो कितनी बड़ी लेकिन बाहर नहीं प्रकट होती। आचार्य कहते जब तक बाहर की प्रकट नहीं होगी तब तक चरणानी योग उसको वृत्ति नहीं मानेगा। चरणानी योग, करणानी योग तो कहेगा कि हो गया काम, अध्यात्म भी कहेगा कि काम हो गया, लेकिन चरणानी योग कहता है कि हमें तो जादू तो उसे कहते हैं जो सिर पर चढ़कर बोले, दुनिया को दिखना चाहिए तुम्हारा वो संयम, तुम्हारी वो अहिंसा, तुम्हारा वो सत्य, तुम्हारा वो अचौरी, तुम्हारा वो ब्रह्मचर्य और तुम्हारा वो अपरिग्रह दुनिया की दृष्टि में दिखना चाहिए। जब तक तुम्हारा परिग्रह सीमित नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि तुमने परिग्रह छोड़ दिया, जबकि परिग्रह के प्रति लालसा भी उसकी अनंतानुबंधी लोभ खत्म हुआ ना। वो बात यहां लिखी है गुरुदेव ने कि वो चीज चली गई, इसलिए संयम भी अवृत्ति भी गई और योग भी गया। श्रीमद रायचंद ने भी कहा है, गुरुदेव उदाहरण दे रहे, गुरुदेव के कोटेशन में रायचंद जी का कोटेशन, कोटेशन में कोटेशन, तो रायचंद जी की सलाह भी आ गई कि सर्व गुणांश ते समकर, सम्यक दर्शन तो सब गुणों में पैदा होता है, तो चारित्र में शुद्धि आई कि नहीं, आनंद गुण में शुद्धि आई कि नहीं, तो हो गया ना संयम प्रकट, और दिखाई देता है ना। पंडित प्रवर टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, देखो अब उन गुरुदेव ने रायचंद को टोडरमल जी को पेश किया, हमने गुरुदेव को पेश किया और गुरुदेव ने, क्यों, जैसे हम जानते हैं ना कि ये जब तक हम गुरुदेव का कोटेशन नहीं देंगे तो इन गुजरातियों की काठियाबाड़ियों की समझ में नहीं आएगा, और ऐसा गुरुदेव जानते थे कि जब तक श्रीमद रायचंद का उदाहरण नहीं देंगे तो श्रीमद रायचंद के भक्तों की समझ में नहीं आएगा, और जब तक टोडरमल का उदाहरण नहीं देंगे तो हिंदी वालों की समझ में नहीं आएगा। हर सब पॉकेट हैं, इस राजनीति में पॉकेट होते हैं ना, बोले ना येदुरप्पा कितना पाप किया फिर भी भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं सकती है, क्यों, एक उसका एक पॉकेट है, उसकी वजह से तो कर्नाटक में जनता पार्टी है, वो गया तो जनता पार्टी खत्म, क्यों समझे ना, वो पॉकेट है। ऐसे ऐसे समाज में भी पॉकेट बने हुए हैं अलग अलग, आप यदि एक का ध्यान नहीं रखोगे तो एक पॉकेट को खोदेंगे, क्या समझ में नहीं, इसलिए बराबर नाम लेके कोटेशन देके बात कह रहे कि नहीं कह रहे। वैष्णव चिट्ठी में लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान व्यक्ति आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, देखा ना। तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि सर्व गुणों में एक देश प्रकट होना सम्यक दर्शन है। अकेले एक सिद्धा गुण की पर्याय नहीं है सम्यक दर्शन वगैरह। अनंत गुणों में जो शुद्धि हुई है उसका नाम सम्यक दर्शन है। गुरुदेव के वो स्वाध्याय भवन था ना ऊपर, जहां तक हमेशा स्वाध्याय करते थे। एक देव लिखा था दिव्य दृष्टि सो सम्य दृष्टि, एक देव लिखा सर्व गुणान संकेत, ये भी लिखा था ना बड़े बड़े अक्षरों में। देखो एक देश प्रकट होना सो सम्यक दर्शन और सर्व देश प्रकट होना सो केवल ज्ञान है ना। इसका अर्थ ही यह हुआ कि सर्व गुणों में चौथे गुणस्थान से ही आंशिक निर्मलता प्रकट होती है, जिसे अनंत गुणों के एक पिंड रूप आत्मद्रव्य का अनुभव हुआ, उसका यथार्थ ज्ञान होकर प्रतीति हुई, उसे सर्व अनंत गुणों में अंश तो निर्मल प्रकट होता ही है। ज्ञानी संकृति जीव भेद विज्ञान के बल से क्रमशः अंतः स्थिरता करके स्वरूप में ठहर कर पर संग से रहित हो कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये पूरा कोटेशन गुरुदेव का है क्या? अब ये मैंने जो निष्कर्ष निकाला है सारी रामायण का वो पढ़ता हूं। मुझे खत्म करना है, मैं कल पूरा करके जाऊंगा ये अध्याय। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जब चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अकेले श्रद्धा गुण में ही निर्मलता प्रकट नहीं होती, किंतु सभी गुणों में आंशिक निर्मलता शुद्धता प्रकट हो जाती है। ज्ञान गुण भी सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। आनंद गुण में भी अतिंद्रिय आनंद की कणिका जागृत हो जाती है। कारित्र गुण में अनंतानंदी कषाय के अभाव रूप शांति प्रकट हो जाती है। यद्यपि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम है, तथापि सम्यक दर्शन होने पर अकेला श्रद्धा गुण ही सम्यक नहीं होता, अपितु संपूर्ण आत्मा सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक दृष्टि के जीव को बोलते हैं श्रद्धा गुण, सम्यक दृष्टि जीव। एक गुण का रूप दूसरे गुण में विद्यमान रहने से सभी में सहज शुद्धता प्रकट हो जाती है। एक गुण का रूप दूसरे गुणों में किस प्रकार रहता है इसका विशेष स्पष्टीकरण इसी ग्रंथ के अंत में 47 शक्तियों के प्रकरण में विशेष विस्तार से किया जाएगा। ये जो तात्पर्य मैंने लिखा है इसमें सब आ गया। अब समय सार टीका और ये समय सार अनुशीलन में क्या अंतर है? ये जो कोटेशन दिए ये सब उसमें से निकाल दिए, और उसमें अमृतेंद्र का अर्थ किया जहां आवश्यक समझा जयसेन को बताया, अति आवश्यक समझा तो राजमल जी को बनारसी दास को कोट किया बहुत कम, और गुरुदेव को भी नहीं किया, और अपना यह निष्कर्ष उसने दे दिया। इसलिए माल तो पूरा मिल गया उस टीका में। अब जिसे विस्तार से सबको देखना हो वो इसमें देखे, समझ गया ना। ये अंतर है। पर इतनी सी बात सुबह बाकी रह गई थी उन गाथाओं में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है। अब भेद विज्ञान की महिमा का निरूपक संबर अधिकार समाप्त हो रहा है, अतः अब भेद विज्ञान की भावना भाने की प्रेरणा देने के लिए आचार्य अमृतचंद्र 3 कलश काव्य लिखते हैं। उसके बाद अधिकार की समाप्ति पर जिस प्रकार प्रत्येक अधिकार के अंत में ज्ञान ज्योति को स्मरण करते आ रहे हैं, उसी प्रकार इस अधिकार के अंत में ज्ञान ज्योति का स्मरण करेंगे। तो 4 कलश बस बाकी हैं, 3 इनके बाद के वेद विज्ञान की महिमा के और 1 कलश अंतिम मंगलाचरण के रूप में। बस उक्त कलशों में भेद विज्ञान की भाने की प्रेरणा देने वाला प्रथम कलश इस प्रकार है। सब पढ़ो भाई पढ़ो संस्कृत पढ़ो पहले फिर हिंदी पढ़ते हो संस्कृत
आत्मतत्व की उपलब्धि से संवर होता इसीलिए तो सत्य दिल से इतपति करना अरे भक्त जन भव्य भावना भी दुनिया की
देखो संस्कृत का हिंदी जी को जो हिंदी जी करेंगे मेरे गलत रखता
संपत्ति संपर एक साक्षा बुद्धा संपत्ति के लोक लंबा सभेद विज्ञान तत्व तस्मा सदभेद विज्ञान मती भाग्य
कहते हैं शुद्धात्म तत्व से के लोक लंबात शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति से साक्षात संवर संपद्यते संवर प्रकट हो जाता है संवर साक्षात प्रकट हो जाता है क्या आज शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है तो उससे संवर प्रकट हो जाता है भेद विज्ञान से क्या होता है शुद्ध तत्व की प्राप्ति और शुद्ध तत्व की प्राप्ति से संवर प्रकट हो जाता है ना सब भेद विज्ञान तयेव तस्मात उस शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि भेद विज्ञान से ही होती है तद भेद विज्ञानम अतीव भाव्यम इसलिए भेद विज्ञान को उत्कृष्टता से भाना चाहिए वो कहते हैं अब हमें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करना है हमें क्या चाहिए संवर कर्म का आना रुक जाए यही चाहिए ना तो कहते शुद्धात्मा की उपलब्धि करो रुक जाएगा कि शुद्धात्मा कहाँ मिलेगा कि भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी इसलिए मूलतः करने योग्य एकमात्र भेद विज्ञान ही है अब पढ़ो हिंदी का देखो कि आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से देखो हेमचंद जी आप देखो तीसरी पंक्ति में है भेद विज्ञान की बात संस्कृत में पर हमने पहली पंक्ति में ली क्यों उसको हमने सीधी कर दिया उनने तो ऐसा कहा था कि भेद आत्मा प्राप्त होगा तो उससे संवर होगा और आत्मा कैसे प्राप्त होगा कि भेद विज्ञान से हम कहते भेद विज्ञान से आत्मा उपलब्ध होगा और आत्मा की उपलब्धि होगी तो संवर होगा इसलिए अब हमें भेद विज्ञान निरंतर भाना चाहिए अब थोड़ा समझ लें जब इसकी गहराई में जाकर के भेद विज्ञान माने क्या है मेरी एक किताब है तीर्थंकर महावीर और उसका सर्वोदय तीर्थ उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है और मैंने यहां उसे कोट किया है इसलिए मैं वो ही पढ़ के आपको सुना देता हूं मेरा कहने से ज्यादा अच्छा वो लगेगा आपको पेज नंबर 132 पर है ना मेरी किताब एक किताब है ना इसमें अब गुजराती का तुम समझ लेना है इसी के मामले में भेद विज्ञान का स्वरूप मैंने 24 वर्ष पहले जब ये लिखा था इसके 24 आज से तो 36 वर्ष पहले हो गया तीर्थंकर भगवान महावीर और उसका सर्वोदय तीर्थ पृष्ठ 128-29 पर इस प्रकार स्पष्ट किया है मिल गया 150 पे देखो भैया इतना बढ़िया लिखा है कि मैं बोलकर उतना बढ़िया नहीं बोल सकता ये शांति से सुनना पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही भेद विज्ञान है भेद विज्ञान स्व और पर के बीच किया जाता है अतः इसे स्वपर भेद विज्ञान भी कहा जाता है वस्तुतः यह आत्म विज्ञान ही है क्योंकि इसमें पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही मूल प्रयोजन है ये सन 74 में लिखा गया सन 74 समझ लिया आज कितना है 11 और 74 से 11 में कितने वर्ष हो गए 37 ये भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव था ना, तो उसमें एक किताब में 40,000 छपके बटी थी और ये महासमिति ने बांटी थी वो साहु शांति प्रसाद जी ने और उन लोगों ने। गुरुदेव की हाजिरी, गुरुदेव तो हाजिर 37 साल पहले गुरुदेव नहीं थे क्या? गुरुदेव की हाजिरी में ख्याल में आई ना। ये देखो भेद विज्ञान में मूल बात दोनों को मात्र जानना या एक साथ जानना नहीं है, भिन्न भिन्न जानना है। भिन्न भिन्न जानना भी नहीं है, पर से भिन्न स्वा को जानना है, पर को छोड़ने के लिए जानना है और स्वा को पकड़ने के लिए जानना है। जानना तो दोनों को है, लेकिन इसे छोड़ना है इसलिए जानना है, इसे पकड़ना है इसलिए जानना है। पर को मात्र जानना है और स्वा को जानकर उसमें जमना है रमना है। स्वा और पर को जानने का आशय उनके भेद प्रबोधों के विकल्प जाल में उलझने से नहीं, किंतु समस्त भेद जिसमें समा गए हैं ऐसे अभेद अखंड आत्मा को अखंड पने जानने से है। अभी कोई किताब नहीं है इनकी भी देखो। दृष्टि की अपेक्षा त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव चैतन्य निज तत्व ही स्वा है। सब पुद्गलादि अचेतन पदार्थ उनके गुण और उनकी पर्यायें तो पर हैं ही, साथ ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व भी पर हैं। यहाँ तक कि संबंध निद्रा और मोक्ष रूप अविकारी पर्यायें भी पर की कोटि में ही आती हैं, क्योंकि इन्हें जीव तत्व में मान लेने पर संपरादि तत्व जुदे नहीं बनेंगे। इसमें मुझे 25,000 का पुरस्कार मिला था 37 वर्ष पहले और गुरुदेव श्री के हाथ से मिला था। अब मन भोपाल पंत कल्याणक में वीर गवाई बैठे हुआ जन्म कल्याणक के दिन स्टेज पर 25,000 की थैली मुझे भेंट की गई थी। इसी किताब के उनका पुरस्कार था वो, और गुरुदेव के सामने मैंने 101 रुपया मिलाकर जिनने भेंट किया था उन्हीं को वापस दे दिया कि इससे इसी किताब का अधिक से अधिक प्रचार करो। तो उन्होंने 30,000 किताबें छपाई इसकी पॉकेट बुक में जो स्टेशनों पर मिलती है, और उसको सारे हमारे 3 महीने की यात्रा थी ना तो उसे गांव गांव में उसको बांटी बाबू भाई ने। धर्मचक्र में जाने वाले जितने लोग यहां होंगे उन्हें ये सब जो एक गवाह दे बैठे मेरे सामने है ना। देखो दृष्टि की अपेक्षा त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव चैतन्य निज तत्व ही स्वा है। सुपर भेद विज्ञान है ना। सब पुद्गलादि अचेतन पदार्थ उनके गुण और उनकी पर्यायें तो पर हैं ही, साथ ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले मुए राग देश आदि विकारी भाव रूप आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व भी पर हैं। यहाँ तक कि संबल निद्रा और मोक्ष रूप अविकारी पर्यायें भी पर की ही गोटी में आती हैं, क्योंकि इन्हें जीव तत्व में शामिल मान लेने पर संबरादि तत्व जुदे नहीं बनेंगे। ये सब 37 वर्ष पहले मेरे ख्याल में थी ये सब बातें। देखो आगे पढ़ते हैं। समस्त परजीव द्रव्य, परजीव द्रव्य समझ में आई ना, अपने जीव को छोड़कर अजीव द्रव्य और आश्रव बंद संबंध निद्रा और मोक्ष रूप पर्याय तत्वों से दृष्टि हटाकर इनसे भिन्न निज ध्रुव तत्व में दृष्टि और ज्ञान को केंद्रित करना ही स्वपर भेद विज्ञान है। आत्मार्थी पर को भी जानते हैं पर उससे कुछ पाने के लिए नहीं जानते, अपनाने के लिए नहीं जानते, पर से भिन्न स्वा की पहचान के लिए वे पर को जानते हैं। उनका पर को जानना भी स्वा की खोज है। क्योंकि उन्हें पर से भिन्न आत्मा को जानना है। पर को न जानेंगे तो उसमें आत्मबुद्धि हो सकती है, इसलिए जिनसे भिन्न जानना है उसे भी जानना होगा, पर उसे जानने के लिए नहीं, आत्मा को जानने में भूल न हो जाए मात्र इसलिए उसे जानना है। ठीक है, पर को जानना है पर हे बुद्धि से जानना है। क्या? जैसे जिसकी मां खो गई है ऐसे बालक अपनी मां की खोज में प्रयत्न में अनेक महिलाओं को देखता है पर उन पर उसकी दृष्टि जमती नहीं। ये जो कहानी लिखी ना मैं स्वयं भगवानों में, ये कहानी उस वक्त भी मेरे दिमाग में थी, लिखी नहीं गई थी, लिखी उसके 15 वर्ष बाद है, लेकिन ये कहानी का बीज इसमें पड़ा हुआ है ना, है ना। यह जानते ही कि यह मेरी मां नहीं है तत्काल उनसे उसकी दृष्टि हट जाती है, पर जब उसकी मां मिल जाए तो उसे देखकर उस पर से दृष्टि हटाता नहीं, उसे देखता ही रहता है, उससे लिपट जाता है, उसमें समा जाना चाहता है। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा यद्यपि पर को जानता है तथापि उसकी दृष्टि पर में जमती नहीं, रमती नहीं। यद्यपि खोज की प्रक्रिया व खोज को भी व्यवहार से भेद विज्ञान कहते हैं। तो पहले जो कहता है ना सौ पर द्रव्य का भेद विज्ञान, वो भी भेद विज्ञान लेकिन व्यवहार से निश्चय नहीं, निश्चय भेद विज्ञान क्या है सुनो। तथापि जिसे खोजना है उसी में खो जाना ही वास्तविक भेद विज्ञान है। क्या है? जिसे खोजना है उसी में खो जाना ही वास्तविक भेद विज्ञान है। कहां गया? अर्थात निज अभेद में खो जाना समा जाना ही भेद विज्ञान है। ये कोटेशन उस समय का है इसमें दिया है। अब अपन वहीं को ही पहुंच जाए। संपद्यते संवर एव साक्षात शुद्धात्म तत्वस्य कलोप लंभात। साक्षात संवर की प्राप्ति शुद्धात्मा की उपलब्धि से होती है और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान का एक भेद विज्ञान से ही होती है, इसलिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना करनी चाहिए। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। इसमें अनुप्रयास अलंकार भी है ना, अलंकार जानते कि नहीं जानते? ये जो तुम्हारी पत्नियां पहनती हैं सोने चांदी हीरों की, इनको अलंकार नहीं कहते हैं? पंडितों के अलंकार कुछ और होते हैं, यमक अलंकार, अनुस्पाश अलंकार, उपमा अलंकार, छंदों के अलंकार में होते हैं ना, ख्याल नहीं ना? तो ये ये, ये, ये अनुप्रयास नामक अलंकार है इसमें। देखो अब बनारसी दास भाई वाले इस छंद का पद्यानुवाद बनारसी दास जी कैसे करते हैं। भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, वरसो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान से विमूल जगत में मानिए, यद्यपि है तदपि उपादे जानिए। कौन सा छंद है? अदिल छंद है। कैसे बोलते हैं बोलो? ये प्रथम देव अरहंत सुध सिद्धांत जी बोला।
भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान से मूल जगत महिमानिए, तदपि है तदपि उपाधि जानिए।
झगड़ा खड़ा कर दिया बना लिखा। भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, भेद ज्ञान संवर का पैदा करने वाला है, इसलिए अत्यंत निर्दोष है, क्योंकि संवर से निद्रा होती है और फिर अनुक्रम से मोक्ष होता है। इसलिए कितना निर्दोष होगा, मोक्ष तक पहुंचाएगा ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से संवर, संवर से निद्रा और निद्रा से मोक्ष, ये रास्ता है। भेद ज्ञान शिव मूल, भेद ज्ञान मुक्ति का कारण है, मुक्ति की जड़ है, मूल है ना। और जगत में मानिए भेद विज्ञान को लोक में मुक्ति का कारण माना जाता है, यद्यपि वो हे है। इतनी महिमा गा रहे और फिर कह रहे हे, यद्यपि हे तदपि उपादे मानिए, फिर भी उसे उपादे कहा गया है। अब ये झगड़ा नहीं निपट सकते आप। जिस भेद विज्ञान के इतने गीत गा रहे थे, तो यही अगली कलश में लिखने वाले हैं क्या, भेद ज्ञान कब लो भलो, के भेद ज्ञान तब लो भलो, के जब लो मुक्ति न हो। ये बता रहे हमारा माथा ठनका के क्या करें, हम तो इतने गीत गा रहे, गीत गा रहे, गीत गा रहे, और ये बीच में कहते हैं कि जी रहे है। हम चाहते तो इस छंद को नहीं देते, देना तो हमारे हाथ में है ना, कोटेशन में क्यों आफत मोल क्यों ले, लेकिन ली आफत मोल, क्योंकि समस्याओं से जूझना समझदारों का काम है, उनसे कन्नी काट के निकल जाना ये समझदारों का काम नहीं है क्या, उसका हल निकाल, हमने निकाला है इसमें, पढ़ के बताते हैं इसमें। देखो संवर का कारण भेद विज्ञान अत्यंत निर्दोष है, क्योंकि अनुक्रम से सर्वप्रथम संवर, संवर से निद्रा और निद्रा से मोक्ष होता है। इस तरह जगत में यह भेद विज्ञान मोक्ष का कारण माना जाता है, यद्यपि विकल्पात्मक भेद विज्ञान को विकल्पातीत न होने से हे कहा जाता है, तथापि उसे उपाधेय ही जानना चाहिए। जवाब इसी में दे दिया। हाँ हिंदी अपन ने अर्थ में दिया, अर्थ मूल में वो शब्द नहीं है, न संस्कृत के पद में न हिंदी में। क्या लिखा है हमने, यद्यपि विकल्पात्मक भेद विज्ञान। भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है, विकल्पात्मक और निर्विकल्प। तो निर्विकल्प भेद विज्ञान तो उपाधेय ही है, और विकल्पात्मक भेद विज्ञान ये कदाचित किसी अपेक्षा से ही है। देखो यद्यपि आचार्य अमृत चंद्र के कलश में भेद विज्ञान के हे होने की बात नहीं आई है, ये है गजब। अमृतचंद्र ने जो बात नहीं लिखी वो बनारसी दास ने कहां से लिखी, कुंद ने नहीं लिखी और अमृतचंद्र ने नहीं लिखी, सोचा कभी आपने, वो बात नहीं है, गाथा में नहीं है और कलश में नहीं है, संस्कृत की टीका में नहीं है। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के भेद विज्ञान को हे होने की बात नहीं आई है, हमने सब खोज करी सब जगह, तथापि कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते समय कलश टीकाकार ने अंत में लिख दिया है कि भेद विज्ञान भी बिना सीख है तथापि उपाधि है, इतना सब उन्होंने डाल दिया राजनीति। अब ये बनारसी दास जी राजमल जी के अंधे भगत थे, गुरुदेव फरमाते थे ना, उन्होंने खुद लिख दिया समय सारक नाटक के अंत में कि राजमली टीका और मैंने उसे पढ़ी। देखो मैं फिर दोहराता हूं, वे भी संस्कृत प्राकृत के विद्वान नहीं थे, निंदा नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। वो 16वीं शताब्दी के आदमी थे, उस वक्त की जो भाषा चलती है उसे जानते थे, और उस वक्त हिंदी गद्य का ढंग से विकास नहीं हुआ था, आरंभ की अवस्था में था। एक कलश टीका सबसे पुराना हिंदी गद्य है, हिंदुओं के ग्रंथों में भी इतना पुराना कोई हिंदी गद्य में ग्रंथ नहीं मिलता, ये हिंदी गद्य के फाउंडर हैं राजमल जी। इनने जो कलश टीका का अर्थ लिखा था, उन्होंने समय सार का अध्ययन उस कलश टीका के आधार पर ही किया था। इसलिए जो लिखा है वे नहीं जानते संस्कृत में है कि नहीं है, वे तो जानते कि लिखा है तो हो गई कौन। अब इसमें जो इतना लिख दिया इनने कि भेद विज्ञान विनाशी है तदापि उपादेय है, तो उन्होंने इसमें डाल दिया यद्यपि हे है तदपि उपादेय जानते। यहां से आया। अब हमने नई खोज करी कि राजमल जी ने कहां चला, क्यों समस्या है। राजमल जी ने अपने घर से तो लिखने की हिम्मत थी नहीं कि जो कुंद कुंद में नहीं है, अमृत चंद्र में नहीं है, और उसे भी अपनी तरफ से लिख दें, ये संभव नहीं। तो हमने वो भी खोज करी कि अगले कलश में ये बात है, उन्हें वहां से पकड़ ली। देखो बाबा भी पढ़ते हैं, अब आप घर पे भी पढ़ोगे भाई साहब इसे, एक तो पढ़ोगे ही नहीं, सच्ची ईमानदारी की बात तो ये है, यहीं आके खोलते हो और पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहां पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, मैं मौखिक भी बता सकता था। इसी को आधार बनाकर बनारसी दास जी ने उसे भी हे लिख दिया है। यह तो हम पहले ही स्पष्ट कराए हैं कि बनारसी दास जी के नाटक समय सार पर राजमल जी की कलश टीका का सर्वाधिक प्रभाव है। वस्तुतः बात यह है कि भेद विज्ञान विकल्पात्मक भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। जब भी भेद विज्ञान का निषेध किया जाए तब उसका आशय तत्संबंधी विकल्प का निषेध समझना चाहिए, ये उत्तर है इसका, है ना। भेद विज्ञान की भावना भाने की प्रबल प्रेरणा देने वाले इस छंद के प्रकरण में उसे हे बताने की बात कुछ अटपटी अवश्य लगती है, तथापि आगे के कलश में इस प्रकार का भाव अत्यंत गुप्त रूप से विद्यमान है, तुम्हें नहीं मिलेगा, वो अंदर छिपा है। अगले कलश में ये बात अत्यंत गुप्त रूप से विद्यमान है, आगामी कलश में बताया जा रहा है कि भेद विज्ञान को तब तक ही भाना चाहिए जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो तब तक ही भाना चाहिए मतलब कभी ऐसा समय भी है कि भेद विज्ञान को नहीं भाना चाहिए, तो उत्कृष्ट स्थिति तो वो होगी ना। इसका तात्पर्य यही होगा, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भेद विज्ञान की भावना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जहां उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई वहीं से वह हे हो जाता है। कहां है जो अगला क्लास पढ़ते हैं, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत् तावत् पराश्रित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कहते भेद पढ़ो भाई इसका हिंदी है, भगवान इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। आप सुनिए ना, वो कहते ज्ञान जब तक करना हो जाए तब तक भगवान की एक पूजा आती है जिसमें आता है ना कि वो क्या बोलो, शुभ भाव रहे तब तक जब तक, हाँ बोलो बोलो, तब तक सत्संगति नित्य रहे, तब तक मम संयम चित्त रहे। हे भगवान तब तक, कब तक, जब तक मैं अपने आत्मा में लीन नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं तुम्हारी भक्ति करूं, अनंत काल तक मैं तुम्हारी भक्ति करता रहूं, ऐसी मेरी भावना नहीं है। हाँ तोरों से हूं चरण जिनके मोख जो लो न पाऊं, माने ये एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद छूट जाएंगी चीजें। इसमें से वो भाव राजमल जी ने एक छंद पहले ही निकाल लिया और वो उसमें डाल दिया। बहुत बुद्धिमान थे राजमल जी, और राजमल जी कैसे विपरीत संयोगों में रहते थे मालूम आपको। जिस राजमल जी की टीका पर गुरुदेव लट्टू थे, उस पर जिन्होंने प्रचन किए और राजमल जी की आचार्यों जैसी प्रशंसा करते थे, वे भट्टारक विराट नगर में रहते थे। विराट नगर है जयपुर से अलवर के बीच में, उसको उस वक्त आजकल बैराट विराट बोलते थे, पहले बैराट, ये बैरासी होते ना, बैराट बोलते थे, और आज उसे फिर विराट नगर, सबसे पहले उसका नाम था विराट नगर, फिर बिगड़ते बिगड़ते बैराट हो गया, फिर स्वतंत्र भारत में फिर विराट नगर कर दिया। वहां के भट्टारक थे, उनके भट्टारक के पंडित थे। अब सोचो भट्टारक हजार वर्ष से कितने भ्रष्ट हो गए थे और उनका साम्राज्य हो गया था, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई जनता कुछ नहीं बोल सकती थी, और उनके अंदर उनके साथ रहते हुए कितने गहरे तत्व के विद्वान थे और कैसी कैसी बातें लिखी हैं, उन्होंने सेटिंग कर रखी होगी उनसे, जो भी हुआ हो जैसे विपरीत संयोगों में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हेमचंद जी या अभी दोनों छंद एक साथ पढ़ो, अब आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा, यदि समझ में आया होगा तो। तुम पढ़ो नहीं, संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ो, सभी समझ में आए।
अरे भक्ति जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सत्य मन से इंद्रियां के तब तक भाना, जब तक पंचे हो निरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, इथिर ना हो जाए अभी क्या कहे।
पहला सुन तुमने पढ़ा ही, उससे मिलान करके पढ़ो तो आए मजा। हाँ आत्मतत्व की उपलब्धि पिछले सन से, हाँ पढ़ो पढ़ो, एक दोनों का मिलान करके देखना।
आत्मतत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्मतत्व की उपलब्धि से संवर होगा, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की,
अरे
भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से विद्याम के तब तक भावना, जब तक बनते हो ज्ञान ज्ञान में, फिर ना हो जाए कभी क्या कहे।
देखो अंतिम उस पहले छंद की अंतिम दो पंक्तियां और दूसरे छंद की आरंभ की दो पंक्तियां बिल्कुल रिपीटेशन है, थोड़े शब्द बदल कर। अध्यात्म में रिपीटेशन गुण माना जाता है। वहां कहा था अरे भव्यजन भेद ज्ञान की भावना तब तक निरंतर भाना, और यहां कह दिया अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की और सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, वही तो बात है ना, दोनों छंद जुड़ते हैं ना आपस में, अकेले का एक अर्थ नहीं किया जा सकता, अन्यथा वो बनारसी दास का छंद गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें भी एक झगड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने, क्या इसमें क्या झगड़ा है बोलो। अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, कब तक, कि जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही फिर ना हो जाए। दिनेश्वर भगवान इससे अधिक क्या कहें, अब जो बाकी तो रिपीटेशन है, और दिनेश्वर भगवान इससे ज्यादा क्या कहें इसमें क्या है। अब एक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए, इसका अर्थ क्या, ये झगड़ा है। अब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का क्या अर्थ है, चौथे गुणस्थान में भी ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, ये भी कर सकते हैं, सातवें गुणस्थान में भी कर सकते हैं, बारहवें में भी कर सकते हैं, और मोक्ष में भी कर सकते हैं, रखा है ना। हाँ पाना समझे ना, मोक्ष में प्रकाशक में कोट किया है इसके छंद, तो उनने शिष्य के मुख में डाला है, शिष्य प्रश्न करता है और उसके उत्तर में टोलेमल जी देते हैं। तो अब ये देखिए क्या कि इसका उत्तर क्या है, तो इसके लिए अपन कहां चलें, सोनगढ़ चलें गुरुदेव के पास, कि विराटनगर चलें राजमल जी के पास, कि आगरा चलें बनारसी दास जी के पास, कहां चले, जयपुर चलना पड़ेगा इसको, मेरे पास नहीं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के पास। देखो किताब में इस कलश में यह कहा गया है कि भेद विज्ञान की भावना तब तक भाना चाहिए जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना क्या है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित कैसे होता है, समझे ना, प्रश्न खड़ा हो गया। इस प्रश्न का उत्तर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में दिया है जो इस प्रकार है। अब आपको अनुशीलन की महिमा आई ना थोड़ी बहुत, क्या है ये चीज, उनका सारा रस निकाल के इसमें डाल दिया है, कुछ छूटा नहीं है, ना जयचंद जी छाबड़ा, ना बनारसी दास, ना पांडे राजमल जी, ना क्या नाम जिनसेनाचारी, हमने संदा के आर्य कुंकुंद का तो पूरा दिया ही है। ये संदर्भ जोड़ करके आपके सामने बात आ रही है। अब जयचंद छाबड़ा का पढ़ते हैं, लिखा यहां ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। ये सब चीजें आप जो शास्त्र पढ़ते हैं उन सब में ये लिखी हैं, उन्हीं ग्रंथों के कोट कर लेना, वो जयचंद छाबड़ा की पढ़ते थे आपने, संदर्भ समय था कलस्थी का, खूब गुरुदेव ने व्याख्याएं की और आपने पढ़े, गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़े, उन्हीं में से निकाल के रखा है। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व ना आए तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है, ये छायक सम्यक दर्शन की बात है। दूसरे जब ज्ञान सुद्योपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है, एक चारित्र की अपेक्षा और एक श्रद्धागुण की अपेक्षा, समझे ना। जब तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान भाते रहना चाहिए, ये जवाब है ना उसका, है ना। उक्त भावार्थ में से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान की भावना भाना चाहिए। ज्ञान का ज्ञान में दोनों प्रकार से स्थिर होने का अर्थ है अप्रतिभाती भाव से छपक श्रेणी का आरोहण करना। जब तक छपक श्रेणी में नहीं चले जाओ तब तक ये भेद विज्ञान में लगे रहना और कुछ में नहीं लगना, फिर तो पास बीच में आ जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तीर्थ यात्रा दान आ जाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें करना के नहीं करना हम कुछ नहीं कहेंगे, समझ आई ना। लेकिन ये अवश्य करना आरोहण, इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धोपयोग के पहले शुभोपयोग के काल में भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए, किंतु बनारसी दास जी इस छंद का जो भावानुवादी इस प्रकार करते हैं, फिर एक किंतु आई अर्थ निकाल दिया ने स्पष्ट, फिर किंतु आ गई कि भेद ज्ञान तब लो भलो कि जब लो मुक्ति न हो, परम ज्योति प्रगट भई तहां विकल्प को। अब ये केवल ज्ञान तक ले गए, परम ज्योति प्रगट भई वो तो अपने छपक श्रेणी के आरोहण तक लाए थे, शुद्धोपयोग में प्रवेश करने के बाद अप्रतिपाती भाव से लाए थे। भेद विज्ञान तब तक भला है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि जब परम ज्योति केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तब कोई विकल्प शेष नहीं रहता। अब कहां से हो गया, चौथे गुण स्थान से शुरू हुआ और मोक्ष तक गया भेद विज्ञान, और उसके पहले भी, अब पहले कहां वो भी इसमें, ये सब लंबा देखो, डेढ़ दो पेज लिखे इसमें और, अभी ये सब मतलब पढ़ के आना भैया, थोड़ी मेहनत करके घर से आना तो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेंगे, ये सब लिखा है कि कहां से कैसे क्या है सब बात है। देखो यहां भेद विज्ञान की भावना भाने को तब तक भला माना गया है जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब प्रश्न, एक और बनारसी दास जी स्वयं विगत छंद में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान ही है, और यहां इस छंद में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान तब तक भाना चाहिए जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए। अतः प्रश्न यह है कि भेद विज्ञान कब तक उपादेय है और कहां से है। अब इसका उत्तर कल करें।